This morning we considered the existence of God.
इस सुबह हमने खुदा की मौजूदगी के बारे में सीखा.
Now we turn to the knowability of God.
और अब हम खुदा के इरफान यानी वो किस तरह सब कुछ जानता है इसके बारे में सीखेंगे.
There is a logical order here.
यहाँ पे जो है हमें एक बकायदा तरतीब नजर आती है.
Is there a God?
के खुदा है, खुदा मौजूद है.
Yes, that's the existence of God.
जी हाँ, खुदा मौजूद है.
Can we know him?
क्या हम उसे जान सकते हैं?
Yes, that's the knowability of God.
जी हाँ, हम खुदा के बारे में जान सकते हैं.
This morning's session, this present section rather, will be more philosophical and abstract, at least for the first half.
अभी हम जो कुछ सीखेंगे उसका आधा हिस्सा आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई फलसफी या कोई ऐसी इल्मी बात है.
Because of the nature of the subject.
क्योंकि ये इस मौजू की नौयत है.
So especially for the first half of the speech.
इस मौजू का जो आधा हिस्सा है.
I ask for your close attention and perseverance.
और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद रहें, कायम रहें और पूरे ध्यान से सुने.
These are the names for the most direct opponents of these two truths.
तो यहाँ पर हमें दो सच्चाइयाँ जो है वो हमें मिलती हैं.
Atheists deny the existence of God.
कि जो गैर कौमें हैं, जो खासकर मुल्हिद हैं, वो खुदा के वजूद का इनकार करते हैं.
Agnostics deny the knowability of God.
और इसी तरह से जो ये भी एग्नोस्टिक भी जो वही लोग होते हैं जो खुदा के वजूद के मुनकर होते हैं.
Let us now consider two arguments against the knowability of God.
और इसके बारे इसके खिलाफ जो है वो दो ऐसे नजरियात या दलाइल.
These two arguments proceed from assertions regarding God himself.
और फिर हम देखेंगे खुदा का कलाम इसके बारे में क्या फरमाता है.
Number one,
पहली बात,
God knows so much that he is not able or not willing to make himself known to man.
ये खुदा की अपनी मर्जी, खुदा सब कुछ जानता है और वो किसी को किसी पर जाहिर करना चाहे ना चाहे ये उसकी अपनी मर्जी है.
Perhaps you know or know of intellectuals.
और हो सकता है ये बात उन लोगों के लिए जो अपनी अकल से समझना चाहते हैं.
Some people spend so much time with their head in a book.
और बहुत सारे लोग अपने ज़हन और किताबों से इसे समझने की कोशिश करते हैं.
That they do not or cannot speak with children.
और वो जो उसे जिसे वो बच्चों के साथ बयान नहीं कर सकते.
Or they do not and cannot speak with non-intellectual adults.
और ऐसे ही वो उन बालिग अफराद के साथ जो अकल से इन सब बातों पर जो है वो गौर गौस करते रहते हैं.
Agnostics often argue that God is like that.
और बाज जो एग्नोस्टिक हैं वो ये मानते हैं कि खुदा भी ऐसा ही है.
He knows so much.
वो सब कुछ जानता है.
Why would he wish to talk with ignoramuses like us?
तो वो जब खुदा सब कुछ जानता है या बहुत कुछ जानता है तो हम जैसे इंसानों से क्यों बात करेगा?
He is so high, how could he condescend to our level?
अब वो इतना ज़्यादा बुलाता है तो क्या ज़रूरत है ज़मीन पर आने की?
But we can turn the argument on its head.
और ये सारा जो दलाइल है ये बहस है वो अपने ज़हन से कर रहे होते हैं.
The problem with such an intellectual person is
एक जो आकल शख्स जो अकल से खुदा को समझने की कोशिश करता है उसके लिए एक मसला ये है.
Not that he knows too much.
कि वो बहुत ज्यादा मुताला नहीं करते.
But that he actually knows too little.
और बहुत कम जानते हैं.
If he also understood children and non-intellectuals,
और वो इसी तरह से बच्चों से और दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं,
he would be able to speak to them on their level.
क्योंकि ये वो समझते हैं कि ये उनके दर्जे के मुताबिक या लेवल के मुताबिक लोग हैं.
God's infinite knowledge is not a barrier to him speaking with us.
खुदा का जो कामल इल्म है या इरफान है वो जो है इस कदर है कि हमें उसके लिए जरूरी नहीं कि वो हमसे बातचीत करे.
God's infinite knowledge enables his community with his communication with us.
ये खुदा की मर्जी है कि वो हमसे कलाम करता है.
Since God is omniscient, he knows what information we can cope with.
और चूंकि खुदा हमादान है यानी हमादान का मतलब होता है कि वो हर चीज से वाकिफ है जो इस जमीन पर होती है.
He knows the key truths he wants to get across to us.
और हर चीज जो हमारे रास्ते में आती है वो हर एक बात से वाकिफ है.
And he knows so much, he knows how to communicate to us.
तो इसीलिए वो जानता है कि हमसे कैसे बातचीत करनी है, हमसे कैसे जो है वो राबता करना है.
The light has just come on.
जिस तरह लाइट यहाँ पर आई है.
Here is a second argument of the agnostics.
दूसरा जो है वो दलील.
It is based on God's incomprehensibility.
ये खुदा की जो है कह लें कि उसके साथ किसी का भी क्या कहा जाएगा उसके वसी इल्म के बारे में.
Their first argument was based on a misunderstanding of God's omniscience.
पहला जो नजरिया मैंने पेश किया एग्नोस्टिक्स का वो खुदा के हमदानी पर सवाल था.
Their second argument is based on a misunderstanding of God's incomprehensibility.
और दूसरा जो है वो उसकी वसील मकानी या वसील नजरी के बारे में है.
The agnostics claim that God is incomprehensible.
वो समझते हैं कि खुदा जो है वो इंसानी कयास से बहुत ऊपर है.
Therefore, we cannot know him.
इसलिए हम उसे जान नहीं सकते. यानी हमारा छोटा ज़हन जो है वो एक बड़े खुदा को समझ नहीं सकता.
But what does God's incomprehensibility mean?
लेकिन इस बात से क्या मुराद है?
God's incomprehensibility means
इसका मतलब ये है
that we do not and cannot have exhaustive knowledge of him.
इसका मतलब ये कि हम खुदा के बारे में एक मखसूस और महदूद इल्म तो रख सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा इल्म नहीं रख सकते.
That is true.
ये बात सच है.
Psalm 145 verse 3 says
ज़बूर 145 की तीसरी आयत
His greatness is unsearchable.
हाँ जी कुछ बात सकता है ज़बूर 145 उसकी तीन आयत.
But we do not need exhaustive knowledge of God.
लेकिन हमें खुदा के बहुत सारे इल्म की जरूरत है.
Knowledge, including our knowledge of God,
हमारा इल्म जो खुदा के इल्म पर है,
can be both partial, not exhaustive.
ये जुज़वी तौर पर तो हो सकता है, सकता मुकम्मल तौर पर ना हो.
And true.
लेकिन सच्चा हो.
You do not have complete and exhaustive knowledge of your husband or wife.
आपको अपने बीवी या शोहर के बारे में पूरा पूरा इल्म नहीं है.
You do not have exhaustive knowledge of your brother or your sister.
आपको अपनी बहन और भाई के बारे में पूरा इल्म नहीं है.
You don't have exhaustive knowledge of your parents.
आपको अपने वालिदैन के बारे में मतलब एक जामे इल्म नहीं है.
You don't have exhaustive knowledge of your friends.
आपको अपने दोस्तों के बारे में यानी कि आप महदूद इल्म रखते हैं लेकिन पूरा इल्म उनके बारे में नहीं रखते.
You don't have exhaustive knowledge of anybody.
आप किसी के बारे में भी इतना ज्यादा इल्म नहीं रखते.
You don't even have exhaustive knowledge of yourself.
और आप हत्ता के अपने बारे में भी पूरा इल्म नहीं रखते.
Do you know how many red blood cells you have?
आपको पता है कि आपके अंदर कितने रेड ब्लड सेल्स हैं?
Do you know what you were thinking exactly 24 hours ago?
आपको इल्म है कि आप 24 घंटे क्या-क्या सोचते रहते हैं?
So if you need exhaustive knowledge of God to know him, You can't even know yourself. You can't know anything.
जब आप अपने बारे में नहीं जानते तो आप एक बड़े खुदा के बारे में इतना सारा इल्म कैसे जानते होंगे?
You don't need to know everything about God.
आप खुदा के बारे में हर चीज जो है वो नहीं जान सकते.
We need to know him truly and savingly.
और हमें इस तरह से खुदा को जानना जो हमें बचा भी सके और हमारे इल्म में भी इजाफा कर सके.
We have just examined two agnostic assertions regarding God.
अभी हमने जिन लोगों के बारे में बात की जो खुदा के वजूद पर सवाल करते हैं उनके दलाइल के बारे में.
Now we come to three agnostic assertions regarding man and his knowledge.
अब उन्हीं लोगों का इंसान के मुतालिक जो है नजरियात तीन या दलीलें वो देखेंगे.
First they claim that man only knows by analogy.
Yes.
Analogy.
Okay.
That something is like something else. Like.
इंसान जो है वो उनके नजदीक इंसान जो है हमेशा किसी न किसी तस्वीर से किसी मिसाल से सीखते हैं.
Analogies for us human beings are limited by our nature and our experiences.
और जो कुछ भी हम तस्वीर करते हैं वो हमारी अपनी अकल और सोच के मुताबिक होता है.
But God's transcendent.
लेकिन खुदा की जो उसकी जो जात है.
He is infinitely exalted above us and our world.
और उसकी जो कुदरत है वो हम सब पर जो है वो हम सबसे बढ़कर है, हम सब पर गालिब है.
How do we respond to this?
हम इसका जवाब कैसे देते हैं?
God is transcendent, yes.
खुदा कभी नहीं बदलता, खुदा ला तब्दील रहता है.
God is also immanent.
और खुदा हमेशा कायम रहता है.
God is in the universe and us.
खुदा पूरी कायनात में भी है और हम में भी है.
Also God's immanence means
इससे खुदा की इसी से मुराद
that God is like the universe and us in certain regards.
और खुदा कुछ बातों में हमारे जैसा है.
Because God is our creator.
क्यों? क्योंकि खुदा हमारा खालिक है.
He leaves characteristics about himself in his creation.
اور وہ اپنی خصوصیات کو اپنی تخلیق میں ظاہر کرتا ہے.
Moreover, it is not true that we only know God by analogy or likeness.
لیکن اس طرح یہ برابر نہیں ہے کہ ہم خدا کو محض کسی چیز سے, کسی تصویر سے, کسی خاکے سے سمجھنے کی کوشش کریں.
We know God by contrasts as well.
اور ہم نہ ہی کسی اور چیز سے جس جو خدا کے بارے میں امتیاز پیدا کرے اس سے سیکھ سکتے ہیں.
Unlikeness.
یا ہمارے جیسے.
God does not grow weary.
خدا جو ہے وہ تھکتا نہیں.
God is not a man that he should repent.
اور خدا انسان نہیں جسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے.
We know God by what he's like and what he's not like.
اور ہم جانتے ہیں کہ خدا کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے.
A second agnostic argument runs like this.
اور دوسری دلیل جو وہ پیش کرتے ہیں.
Man only knows God by negatives, what God is not.
انسان ہمیشہ خدا کو منفی باتوں سے جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کیا نہیں ہے.
This is called apophatic theology or the via negativa, the negative way.
غلط طریقے سے خدا کو سمجھنے کی کوشش کرنا.
Here are some negative statements regarding God.
یہاں کچھ منفی باتیں ہیں جو خدا کے بارے میں کہی جاتی ہیں.
God is not physical or changeable.
خدا جو ہے وہ جسم نہیں رکھتا اور he's not
physical.
خدا جو ہے وہ جسم نہیں رکھتا اس لیے وہ لا تبدیل ہے.
God is not limited by space or bound by time.
اور خدا جو ہے وہ زمان و مکان یعنی کہ ٹائم اور سپیس سے بلند ہے, معاورہ ہے.
God is not wicked or foolish.
اور خدا نہ تو بے وقوف ہے اور نہ ہی وہ احمق ہے.
Surely knowing what God is not gives us some knowledge of him.
اور یہی منفی باتیں ہمیں کچھ نہ کچھ خدا کے بارے میں علم فراہم کرتی ہیں.
And knowing what God is not points to what he is.
یہ جاننا کہ خدا کیسا ہے یعنی منفی باتوں سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا نہیں ہے.
God is not wicked.
خدا برا نہیں ہے, شریر نہیں ہے.
Therefore he is the opposite.
اس لیے اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ شریر نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟
Holy,
وہ پاک ہے,
righteous and
وہ راست باز ہے.
It's not true that we only know God by negatives.
تو یہ ساری باتیں جو منفی باتیں جن کے بارے میں یہاں پہ پیش کیا گیا.
We know a lot about God positively.
اور پھر ہم بہت ساری باتیں مثبت طور سے بھی خدا کے بارے میں دیکھتے ہیں.
His existence and attributes.
اس کی صفات اور اس کی موجودگی.
As we heard this morning.
جس کے بارے میں ہم نے صبح سنا.
His names and persons.
پھر اسے ہم اس کے ناموں اور شخصیات کے ذریعے سے جانتے ہیں.
His eternal decree and works.
اور اس کے ازلی ارادے اور کاموں کے ذریعے سے جانتے ہیں.
Here is a third agnostic argument based on man.
اور تیسرا جو نظریہ, تیسری دلیل جو انسانوں کے حوالے سے اگنوسٹک رکھتے ہیں.
Listen carefully. This is a bit philosophical.
یہ اس کو ذرا دھیان سے سنیں, یہ ذرا تھوڑی سی پیچیدہ ہے.
All man's knowledge is relative to and conditioned by himself.
جو انسان کا سارا علم ہے وہ خود ہی اسی کی ذات سے مشروط ہے. یعنی وہ کیا سیکھنا چاہتا ہے, کیا جاننا چاہتا ہے, یہ اسی سے مشروط ہے.
The one who does the knowing.
جو جاننا چاہتا ہے کچھ بھی.
There is something to that.
اور یہ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں موجود ہے.
My conception of the color green may differ from yours.
اور میرے نزدیک ہو سکتا ہے کہ جو سبز رنگ ہے وہ کسی اور طرح کا ہو اور آپ کے نزدیک سبز رنگ کسی اور طرح کا ہو.
What you believe regarding the holiness of God may not be exactly the same as the person next to you.
اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک خدا کی جو پاکیزگی ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے مطلب بیٹھے شخص کی پاکیزگی کی طرح نہ ہو.
But our own personal subjectivity,
لیکن جو میرا شخصی موضوعیت ہے,
does not so distort earthly things,
زمینی چیزوں پر نہیں ہے,
or the nature of God,
اور نہ ہی خدا کی فطرت پر,
that we cannot have true knowledge.
جب تک ہمیں حقیقی علم جو ہے یا حقیقی عرفان حاصل نہ ہو.
We've considered agnostic arguments against the knowing of God.
اور ہم نے ابھی جو ہے agnostic سے جو بھی دلیلیں ہیں خدا کے خلاف ان کا جائزہ لیا.
From who God is,
خدا کیسا ہے,
and from whom we are,
خدا کون ہے اور کیسا ہے, اور ہم کون ہیں اور کیسے ہیں.
Some agnostics even quote the Bible.
اور سم جو کچھ اگنوسٹک ہیں وہ اکثر جو ہے وہ بائبل کا حوالہ پیش کرتے ہیں.
As if scripture denied that God was knowable.
کہ خدا, بائبل ہی فرماتی ہے کہ خدا کو جانا نہیں جا سکتا.
The classic text appealed to here is in Job 11.
جو اس کا ایک بیان ہے وہ Job 11.
Job 11, and we'll read verses 7 through 9. Job 11.
ایوب 11, 7.
7 through 9.
Okay. کیا تو تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے؟ کیا تو قادر مطلق کا بھید کمال کے ساتھ دریافت کر سکتا ہے؟ وہ آسمان کی طرح اونچا ہے तू क्या कर सकता है, वो पाताल से गहरा है, तू क्या जान सकता है, उसकी नाप जमीन से लंबी और समुंदर से चौड़ी है।
This passage rules out man's exhaustive knowledge of God.
तो यहाँ पर हमें नजर आता है कि कैसे एग्नोस्टिक जो है वो इस दलील को इस्तेमाल करते हैं कि खुदा जो हमारी समझ से बाहर है।
For God is infinite.
कि खुदा अगर जो खुदा कामिल है।
But the passage does not rule out.
लेकिन जो यहाँ पर हवाला है।
The believer's saving partial knowledge of God.
तो इसका मतलब है कि जो ईमानदार हैं वो खुदा के बारे में जुज़्वी इल्म रखते हैं।
In fact, the whole book of Job presupposes and teaches that man can know God.
जबकि अय्यूब की जो किताब है वो ये बयान करती है कि ईमानदार जो है वो खुदा के बारे में जुज़्वी इल्म रख सकते हैं।
And the whole Bible presupposes that we can know God.
और पूरी बाइबल को दस हमें ये बयान करती है कि हम खुदा को जान सकते हैं।
These words of Zophar in Job 11.
और इसी हवाले में जो ज़ोफर है यानी जो शख्स उसके बारे में बयान किया गया है ये अल्फाज है ज़ोफर नबाती के
दे स्पेशली अपोज मैनस नोइंग गॉड बाय हिज ओन एफर्ट्स
के इंसान खुदा को अपनी कोशिश से नहीं जान सकता अपनी कोशिश से
द आईडिया दैट मैनस विल मैनस स्ट्राइविंग मैनस इंटेलेक्ट विदाउट ग्रेस कैन डिस्कवर गॉड
यानी बगैर फजल के हम खुदा को यानी इंसान जो खुदा को नहीं जान सकते जब तक खुदा उस पर फजल ना करे।
Listen to this as Arslan reads verses 7 through 9 again, please.
मैं दोबारा से हवाला पढ़ूंगा आप दोबारा से सुने। क्या तू तलाश से खुदा को पा सकता है? क्या तू काजबुद्दे का भेद कुमाल के साथ दरियाफ्त कर सकता है? वो आसमान की तरह ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वो बताल से गहरा है, तू क्या जान सकता है? उसकी नाप जमीन से लंबी और समुद्र से चौड़ी है।
Why can't man discover God by himself?
कैसे खुदा इंसान जो खुदा को जान सकता है?
Because man is weak and sinful.
क्योंकि इंसान जो है वो कमजोर है और गुनाहगार है.
1 Corinthians chapter 2 teaches the same thing.
पहला कुरिन्थियों का दूसरा बाब भी यही बात सिखाता है.
Verse 9 quotes Isaiah 64 verse 4.
और जो इस हवाले की नवी आयत है वो यशायाह की किताब की बात को पेश करती है जहां में लिखा है बल्कि जैसा लिखा है तो जैसा लिखा है यशायाह का हवाला है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी ना आदमी के दिल में आई वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी।
This shows that empiricism and rationalism are useless to discover God.
तो इसका मतलब है कि जो हमारी अकल पसंदी है यानी अकलियत है यानी अकल से समझने को खुदा की कोशिश है वो ऐसे बेकार ही है।
Science, mathematics and philosophy are very useful.
साइंस रियाजी और जो फलसफा है वो इस बारे में मददगार है।
But you don't find God at the end of an equation.
लेकिन आप खुदा को ऐसे पूरे तौर से समझ नहीं सकते।
So what is needed for a person to be knowable?
तो ऐसी कौन सी बात है जो इंसान को इस काबिल बनाती है वो खुदा को जान सके?
For people to know X.
के वो खुदा बता सके।
X as he truly is.
और ऐसा जैसा वो है।
The key things about X.
के वो कैसा ख्याल रखता है?
Personal things about X.
के कौन सी शख्सी बातें जो है उसमें पाई जाती हैं?
First, X must know himself.
तो इसका मतलब है कि जिस बारे में बात जिस शख्स के बारे में बात की जाती है उन्होंने मिसाल इस्तेमाल की है कि उसे उसके बारे में इल्म होना चाहिए।
In order to communicate the truth about himself to others.
उसे पहले खुद के बारे में इल्म होना चाहिए ताकि वो दूसरों को भी उसके बारे में बता सके।
Tiny infants don't have self-knowledge.
जो छोटे बच्चे हैं वो अपने बारे में इल्म नहीं रखते।
People in a coma aren't thinking about their self-identity.
जो लोग कोमा में होते हैं उनको भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है।
If X loses his memory,
अगर जो ये शख्स X जो कह रहे हैं कि ये फर्ज किया कि अगर एक शख्स ऐसा है जिसे वो अपनी मेमोरी जो है यानी अपना जो हाफजा वो खो बैठे।
If X is totally deluded,
और वो सारा कुछ भूल जाए और सब कुछ भुला बैठे।
And X thinks that he is the most handsome and intelligent human being ever.
और वो सोचे कि वो सबसे ज्यादा अकलमंद और ज्यादा खूबसूरत
है। And he thinks he's really strong and popular, more than anybody else.
और वो बहुत ज्यादा मशहूर और कामयाब है।
If X is deranged,
और अगर उसकी सारी जो अपनी राह से वो हट जाए।
And thinks he is a squirrel,
और वो सोचे कि वो एक गुलहरी है।
If X has lost touch with reality,
और वो सच्चाई को जो है वो ना जाने।
He can never explain who he is.
तो वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं बता सकता कि वो कौन है।
Proper self-knowledge,
यानी अपने बारे में इल्म होना,
your self-knowledge, your knowledge of yourself includes,
यानी हम जो यहाँ पर बैठे हैं अगर हम अपने बारे में इल्म नहीं रखते,
your self-consciousness,
अपने ज़मीर के बारे में नहीं रखते,
योर सेल्फ अवेयरनेस,
आप अपने बारे में खुद ही आगाह नहीं है,
unlike a tiny infant or a person in a coma,
छोटे बच्चों की तरह या उन लोगों की तरह जो कोमा में हैं,
you need a mind and a memory,
तो इसलिए आपको एक दिमाग और हाफ़ज़े की ज़रूरत है,
exercised within yourself and outside,
और ये मश्क करने की ज़रूरत है कि आप अंदर और बाहर,
you need to be seeing,
कि जो कुछ आप देखते हैं,
and not mad or psychotic,
और कि वो कुछ भी उसमें ऐसी दीवानगी वाली बातें नहीं
है, and you need to be honest,
और आपको ईमानदार होने की ज़रूरत है,
not absurdly deluded.
कि वो ऐसा शख्स है जिसे कुछ पता ही नहीं है.
Number one, X must know himself.
चूंकि ये X की मिसाल इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि पहली बात कि जो इंसान है उसे अपने बारे में इल्म होना चाहिए.
Number two, X must reveal himself.
और दूसरी बात वो खुद को जाहिर करे.
He must be willing to tell other people about himself.
और वो दूसरों को अपने बारे में बताए कि वो कैसा है.
Unlike some male teenagers.
और इसी तरह से जिस तरह मर्द हजरात हैं,
some male teenagers where I am,
जैसे मैं हूं,
only ever grunt at their mothers,
कि वो जिस तरह अपनी मर्दों पर गुस्सा करते हैं,
how did it go in school today,
और स्कूल कैसा रहा, इन्हें मिसाल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आगे से इस तरह जवाब दे, यानी कि ऐसा बच्चा जिस तरह जवाब दे,
so you've got to be willing to tell people about yourself,
तो इसलिए लाजिम है कि हम दूसरों को, यानी जो एक्स है वो दूसरों को बताए कि वो कैसा है.
And you've got to be able to tell people about yourself.
और इसलिए हमें भी अपने आप को जानने की जरूरत है ताकि हम दूसरों को बता सकें.
Not mute like Zacharias.
ज़करिया की तरह खामोश ना हो.
Who couldn't speak for the 9 months prior to the birth of John the Baptist.
जो यहाँ इस तबागी की पिदाई से पहले तक क्या रहा था, गंगा रहा था.
Not someone who doesn't know sign language and can't write, even if they're mute.
और जो इशारों की ज़बान समझता था फिर लिखता था.
X must be willing and able to reveal himself, and he must do it.
और इसलिए उसे अपने आप को समझना है और फिर उसे अपने आप को बयान करना है.
Now let's consider our blessed and holy God in this connection.
इसलिए अब हम खुद अब हमारे जो मुबारक खुदा है और पाक खुदा है उसकी जात पर गौर करेंगे उसके हवाले से.
God possesses perfect self-knowledge.
खुदा जो है वो अपने बारे में कामिल इल्म रखता है.
He is conscious of himself.
वो अपने आप से वाकिफ है अच्छी तरह.
He uses the pronoun I.
वो अपने लिए इसमें ज़मीर इस्तेमाल करता है, इसलिए कहता है मैं.
Over against thou or you, second person.
और फिर वो इसके लिए कि मैं तेरा और इस तरह से दीगर अल्फाज जो है.
Or he or she or they, third person.
तो इस तरह वो दूसरों के बारे में भी जो है वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं.
God has self-consciousness and a mind.
खुदा के पास जो है वो उसकी इरादा, उसका अपना इरादा, उसका अपना एक ज़हन है.
1 Corinthians 2 verse 16 refers to the mind of the Lord.
तो यहाँ पर जो 16वीं आयत है पहले दूसरे बाब की, खुदावंद की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके.
He is omniscient, knowing himself.
वो सब कुछ जानता है, हर एक शय का इल्म उसे है.
Everything in the universe,
जो कुछ कायनात में है.
And all possibilities,
और जो कुछ हो सकता है कायनात में.
God knows himself better, far better than anyone else knows himself or herself.
और खुदा जो है वो अपने बारे में कामिल इल्म रखता है कि कोई भी उसे यानी कह लें कि कोई भी ऐसा इल्म नहीं रखता कि उसे जान सके पूरे तौर से.
He knows himself absolutely perfectly and exhaustively.
वो अपने बारे में सब कुछ जानता है, पूरे तरह से जानता है.
And God knows himself instantly and eternally.
और खुदा अज़ल से ये सारा कुछ जानता है.
He doesn't need a process of reasoning.
उसके पास जो है ये अकल की, यानी कि जो हम सवाल करते हैं अपनी अकल से, इसके लिए वो कोई वजह नहीं है.
He doesn't need to recollect or remember.
उसे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है.
He knows everything instantaneously.
उसे वो फौरी तौर पर सब कुछ जानता है.
And as for sanity,
और हफ्ते के लिए,
God is always in touch with reality.
और खुदा जो है वो हर एक शय से वाकिफ है.
Because he is the ultimate reality.
यानी वो हमारे हर एक दिन से वाकिफ है, क्योंकि वो हर एक चीज की हकीकत से वाकिफ है.
As the eternal and self-existent God.
क्योंकि वो खुद इनसार है, खुद वजूद है, यानी वो वजूद रखता है और सब कुछ जानता है.
And he controls created reality.
और जो कुछ इस जमीन में, इस पूरी कायनात में सच्चाइयां पाई जाती हैं, वो उन सब का बनाने वाला है.
Because he decreed it.
क्योंकि उसने इन सब को मुतय्यन किया है.
He created it.
उसने इनको बनाया है.
He governed it.
और वो इन पर हुकूमत करता है.
And on the last day,
और आखिरी दिन,
He will judge everyone for their behavior in the world He made.
इसलिए वो आखिरी दिन हर एक को उसके मिजाज के मुताबिक उसकी आदतों के मुताबिक उसका क्या देगा उसका उसके अदालत करेगा.
What about God's honesty?
खुदा की ईमानदारी के बारे में क्या ख्याल है?
He never lies.
वो झूठ नहीं बोलता.
About himself or anything else.
अपने बारे में वो कभी भी ना अपने बारे में झूठ बोलता है ना किसी और चीज के बारे में झूठ बोलता है.
He cannot lie about himself or anything else.
अपने बारे में झूठ बोल ही नहीं सकता.
Titus 1 verse 2 says that.
और तीतुस की किताब का पहला पद दूसरी आयत जो है वो.
So God has perfect self knowledge of himself.
तो इसलिए खुदा अपने बारे में मुकम्मल तौर पर इल्म रखता है.
And Jehovah reveals himself.
और यहोवा खुदा जब अपने आप को हम पर जाहिर करता है.
He is willing to make himself known.
और ये उसकी मर्जी है कि वो अपने आप को हम पर जाहिर करता है.
Especially to his elect people.
और खास तौर पर अपने बरगजीदा लोगों पर.
As Matthew 11 verse 27 says.
जैसा कि मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब और 27 आयत फरमाती है. मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे.
God is both willing and able to reveal himself.
तो ये खुदा की मर्जी है और वो जब चाहे जिस वक्त चाहे अपने आप को किसी पर भी जाहिर कर सकता है.
Did God not give us our minds and our mouths?
तो क्या खुदा ने हमें ज़हन और ज़ुबानें अता नहीं की?
So that we can reveal our thoughts to others.
तो इसलिए हम अपने बारे में दूसरों को बता सकते हैं.
Well, if man can reveal himself,
अगर इंसान अपने बारे में दूसरों पर जाहिर नहीं करना चाहता,
certainly God can reveal himself.
तो यकीनी बात है कि खुदा अपने आप को हम पर जाहिर करता है.
A while back, I read a Western theologian.
मैंने एक मगरबी जो इलाहियात दान है उसके बारे में पढ़ा.
And this foolish person said.
और वो अहमक आदमी ने कहा,
God is like a spastic child who can't tell us what he thinks.
और उसने कहा कि खुदा एक ऐसे बच्चे की मानो जो ये नहीं बता सकता कि वो कैसा है.
A professional theologian.
एक ऐसा शख्स जो बड़ा माहिर है बाइबली इल्म में.
The man is spiritually insane.
तो इसका मतलब है कि वो रूहानी तौर पर क्या है, पागल है या बेवकूफ है.
God is willing and able to reveal himself and does reveal himself.
तो ये खुदा की पाक मर्जी है कि वो अपने आप को अपने लोगों पर हम पर क्या करता है, जाहिर करता है.
He reveals himself in his general revelation.
तो वो अपने आप को इस तरह हमने सुबह पढ़ा कि वो अपने आप को आम मुकाशवा के जरिए जाहिर करता है.
As we saw this morning.
जैसा कि हमने सुबह सुना.
In creation and providence.
तखलीक में और परवरदिगारी के कामों में.
The heavens declare the glory of God.
आसमान खुदा का क्या करते हैं, जलाल जाहिर करते हैं, बयान करते हैं.
And man has a conscience.
और इंसान के अंदर ज़मीर पाया जाता है.
God reveals himself even more in special revelation.
और खुदा इससे बढ़कर अपने आप को खास मुकाशवा के जरिए जाहिर करता है.
Which is now recorded for us infallibly in the Old and New Testaments.
और खुदा का ये जो सारा खास मुकाशवा है, ये कहां पर है? ये बाइबल मुकद्दस के पुराने और नए अहदनामे में है.
God reveals himself in words and deeds.
और खुदा जो है अपने कलाम और कामों के जरिए से जाहिर करता है अपने आप.
In miracles, signs and wonders.
और मौजज़ात, बड़े कामों और अजीब कामों के जरिए से.
In dreams and visions.
और ख्वाबों और रोयात में.
In types and shadows.
और इस तरह से तमासील में और जो है वो मिसलों के जरिए.
In the psalms and biblical history.
और इसी तरह से मज़ामीर में और बाइबली तारीख में.
In theophanies like at Mount Sinai.
और इसी तरह से जिस तरह खुदा ने अपने आप को कोहे सीना पर जाहिर किया.
And in Christophanies as in Isaiah chapter 6.
और जिस तरह मसीह को यसाया की किताब में उसके इजहार को बयान किया गया है.
And fundamentally in his incarnate and crucified son.
और बुनियादी तौर पर खुदा का काबिल इजहार किस में होता है? खुदावंद यीशु मसीह ने, जिसने सलीब पर अपनी जान दी.
God has supremely revealed himself in Jesus Christ in the Bible.
और खुदा ने सबसे आला तौर पर यीशु मसीह में खुद को जाहिर किया है.
This revelation comes down to us.
और ये जो मुकाशा, ये ऊपर से नीचे की तरफ आया है.
Sinful man doesn't work up to God.
और इसलिए जो गुनाहगार इंसान है वो ऊपर की तरफ नहीं जा सकते.
Divine revelation is his condescension.
तो इसलिए हम देखते हैं कि जो इलाही मुकाशवा है वो नीचे आया है इंसानों के लिए.
Now let us simplify the phrase, the knowability of God.
अब हम इसको सादा तरीके से समझने की कोशिश करेंगे.
We break it down into more accessible chunks.
तो हम इसको आसानी से ऐसे अल्फाज में सीखने की कोशिश करेंगे.
To whom is God knowable and known?
खुदा किन के लिए जो है वो खुदा किन लोगों से वाकिफ है, ये कौन लोग जो है उससे वाकिफ हो सकते हैं?
Himself.
वो खुद से वाकिफ है.
The holy angels.
पाक फरिश्ते उससे वाकिफ है.
Even the demons.
और हद तक के शयातीन भी उसको जानते हैं.
The demons also believe in God and tremble.
और शयातीन भी उसको जानते हैं और उसे थरथराते हैं.
That's James 2 verse 19.
जैसा कि याकूब दूसरे बाब में लिखा है.
Believers in heaven know God.
और जो ईमानदार आसमान पर है वो उससे वाकिफ है.
Unbelievers in hell are aware of him all the time.
और जो गैर ईमानदार जहन्नुम में है वो भी उससे वाकिफ है.
Believers in this life know God.
और जो इस जमीन पर इस दुनिया में ईमानदार है वो खुदा से वाकिफ है.
We know him through faith in Jesus Christ.
और हम मसीह पर ईमान के जरिए से उससे वाकिफ है.
And unbelievers in this life know God is too.
और जो गैर ईमानदार है वो भी वाकिफ है खुदा से.
Romans 1 Psalm 19, Psalm 14, as we saw this morning.
और रोमियो और ज़बूर 14 और 19 जो हमने पढ़ा, ये सारे हवाले ये ही कुछ साहिब करते हैं.
We could have looked at Acts 14 and Acts 17 as well.
और इस तरह से हम आज 14 और 17 भी.
Or Isaiah 6.
और इस तरह से यसाया 6.
But we can't cover everything.
लेकिन हम हर एक चीज का अहाता नहीं कर सकते यहाँ पर.
How is God known by people in this life?
इस जिंदगी में लोग खुदा से कैसे वाकिफ होते हैं?
This is a bit of revision.
ये एक रिवीजन है जिसे ने ये दोबारा से दोहराई है.
Those who have never heard the gospel know of God through general revelation.
तो सुबह हमने सीखा जैसा कि जो लोग इंजील से वाकिफ नहीं है वो आम मुकाशवा यानी कायनात और तखलीक में जो कुछ नजर आता है उसके जरिए से खुदा से वाकिफ है.
Those who are saved know God through special revelation and therefore general revelation too.
और जो लोग बचाए गए हैं यानी जो लोग निजात याफ्ता है वो भी आम मुकाशवा के जरिए खुदा से वाकिफ है.
Those who've heard the gospel but rejected it.
जिन लोगों ने इंजील का पैगाम सुना लेकिन उसे रद्द कर दिया.
They know about God through special revelation and general revelation.
तो वो भी जो है वो खुदा से वाकिफ है आम और खास मुकाशवा के जरिए.
But they turn from the light to the darkness.
लेकिन वो रोशनी से तारीकी की तरफ जाते हैं.
To what extent is God known?
किस हद तक हम खुदा को जान सकते हैं?
Unreached pagans know God's existence, some of his attributes, some of his works.
तो जो गैर कौम है यानी जो ऐसे लोग जो अभी तक खुदा उनको नहीं जानते वो किसी ना किसी हद तक मुख्तलिफ तरीकों से खुदा के बारे में जानते हैं.
But they suppress this knowledge.
लेकिन वो हक को नाराज़ से क्या रखते हैं, दबाए रखते हैं.
By substituting something else in God's place.
और वो उसकी जगह खुदा की जगह किसी और को शामिल कर देते हैं.
Romans 1 verse 18.
और रोमियो 1:18.
Saved saints know an awful lot more about God.
और ज़्यादा खुदा के बारे में जानने के लिए.
And we know him from the heart with love.
और हम मोहब्बत भरे दिल से खुदा को जानते हैं.
The incarnation and cross of Jesus.
और सलीब पर यीशु मसीह की मसलूबियत के जरिए खुदा को जानते हैं.
The blessed Trinity.
और पाक तसलीस के जरिए खुदा को जानते हैं.
The work of the Holy Spirit.
और रूह कुदस के काम के जरिए खुदा को जानते हैं.
Justification by faith alone.
और ईमान के जरिए से हमारी जो तस्दीक है खुदा के जरिए उसके जरिए खुदा को जानते हैं.
Our sanctification by the Holy Ghost.
और रूह कुदस के जरिए हमारी तकदीस के जरिए हम खुदा को जानते हैं.
The truth about the church.
और कलीसिया के बारे में जो सच्चाई है.
The truth about the second coming and the signs of Christ's return.
और फिर मसीह के आने के बारे में और जो कुछ होगा उसके बारे में ईमान रखने के जरिए से.
In short, the truths taught in the Bible.
और जो वही सच्चाई जो बाइबल मुकद्दस में बयान की गई है.
And the Bible is a big, deep book.
और बाइबल मुकद्दस जो है एक गहरी और अमीक किताब है.
In what way is God known?
किस तरीके से हम खुदा से वाकिफ होते हैं?
We believers have a saving knowledge of God as Father in Christ.
हमें खुदावंद यीशु मसीह में निजात बख्श इल्म अता किया गया है जिसके जरिए हम खुदा को जानते हैं.
Unbelievers have a non-saving knowledge of God.
और जो गैर ईमानदार जो मसीह पर ईमान नहीं लाते वो भी उसी इल्म के जरिए जो है यानी जो उनको अता किया गया उसके जरिए से खुदा को जानते हैं.
This leaves them without excuse and under God's wrath.
और फिर कोई उज़र बाकी नहीं रहता इसलिए वो खुदा के गज़ब के नीचे आएंगे.
As we saw from Romans 1 earlier.
जैसा कि हमने रोमियो 1 में पढ़ा.
Even the very names of the three persons in the Godhead.
खुदा की ज़ात में तीन शख्सियात जिन्हें हम जिनके नाम है यानी बाप बेटा और रूह कुद्स.
Proclaim that God is knowable.
वही ये बयान करते हैं कि खुदा जो है उसे जाना जा सकता है.
God does not call himself the abyss, the darkness, the unutterable.
और खुदा अपने आप के लिए कोई भी ऐसे जो है बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता.
God says, I am the Father and the Son and the Holy Spirit.
तो हम देखते हैं कि खुदा फरमाता है कि कौन बाप है, कौन बेटा है और कौन रूह कुद्दस है.
Let's think of the first person of the Trinity, the Father.
अभी हम जो है पहली शख्सियत यानी खुदा बाप के बारे में जानेंगे.
Most people know their fathers.
बहुत सारे लोग जो है वो जानते हैं कि बाप कौन है.
Fathers should provide love and strength and care.
जो बाप होते ही नहीं, जो हमारे वालिद हैं, वो हमारे लिए क्या करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं और हमें जो भी हमें चाहिए होता है वो ला कर देते हैं.
So when God the Father comes to us,
जब बाप हमारे पास आते हैं, खुदा बाप हमारे पास आता है,
we already know that earthly fathers reflect some of his characteristics.
तो वो इस बात से बखूबी वाकिफ है कि जमीन पर जो बाप है वो किस तरह से अपने बच्चों के साथ पेश आते हैं.
Then the second person is called the Son.
जो दूसरा शख्स है पाक तस्लीस में वो खुदा बेटा है जिसे हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं.
The Son looks like the Father.
जो बेटा है वो बिल्कुल बाप की तरह है.
Even as our earthly sons generally look like their fathers.
और जिस तरह जमीन पर ऐसा होता है कि बेटे जो है वो बाप की तरह के होते हैं.
John 1 verse 18 says,
योना 1:18 फरमाती है,
The only begotten son which is in the bosom of the father, he hath declared him.
योना 1:18 में लिखा कि बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने बाप को जाहिर किया.
Jesus said,
यीशु मसीह ने फरमाया,
He that has seen me,
जिसने मुझे देखा,
hath seen the Father.
उसने बाप को देखा. योहन्ना 10:30.
John 14 verse 9.
और योहन्ना 14:9.
The Father and the Son.
बाप और बेटा.
God is therefore a family God.
इससे मतलब है खुदा जो है वो एक खानदान रखता है.
And people know about communion and friendship in a family.
तो उसमें जो है वो लोग जो है वो शिरकत करते हैं और एक खानदान की तरह है.
Especially John chapter 1 calls Jesus the Word.
योहन्ना पहले बाब में उसे बेटे को क्या कहा गया है? कलमा कहा गया है, कलाम कहा गया है.
Word is all about speech.
जो कलाम है वो हमेशा हमारे जो हम बोलते हैं उसके बारे में होता है.
People think words and speak words.
हम जो है वो ज़हनों में सोचते हैं और फिर बोलते हैं.
The Son is the Word in the Godhead.
और जो बेटा है वो खुदा के ज़हन में है यानी.
The Son is the Word to us in Revelation.
और खुदा का बेटा जो है वो मुकाशवा में खुदा का कलाम है.
In the Word, God Himself speaks to us.
और यीशु मसीह के जरिए खुदा हमसे क्या करता है? कलाम करता है.
The Son is also called wisdom.
और यीशु मसीह को हिकमत भी कहा गया है, खुदा की हिकमत.
Proverbs 8 and 1 Corinthians 1.
और इम्साल की किताब में और इस तरह से रोमियों में.
The key idea about wisdom is adaptation.
और ये जो बात है ये इस तरह जाहिर करती है.
We will say a lot more about that in a later session.
बाद के सेशंस में हम इस बात पर गौर करेंगे कि कैसे है.
As the wisdom of God,
कि खुदा की हिकमत,
Christ sets the highest end attainable for mankind.
और यीशु मसीह जो है वो सबके लिए जो है वो सबसे बढ़कर है, सबसे ज्यादा तरजीह के काबिल है.
People knowing their God.
उसके जरिए लोग खुदा को जानते हैं, इसलिए ज्यादा तरजीह रखता है.
And as the wisdom of God, Jesus adapts himself,
और इसके जरिए से,
as the fit means to reveal God.
यानी इसके जरिए से यीशु मसीह एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम खुदा को जानते हैं.
We move from the name of the Father and the name of the Son to the name of the Holy Spirit.
अब हम बाप बेटे के बाद रूह कुद्स के नाम पर आते हैं.
There is a weak creaturely reflection.
यहाँ पे एक कमजोर जो है वो एक क्या लेके इजहार करूंगा मैं.
Of the divine spirit in the Holy Trinity.
पाक तस्लीस में, पाक तस्लीस के हवाले से.
And our human spirits inside us.
जो रूहें हमारे अंदर हैं.
1 Corinthians 2 verses 10 and 11 speak of this.
क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है, इंसान के अपनी रूह के जो उसमें है, इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता.
Both the divine spirit in the Trinity and our human spirits are internal.
चाहे वो खुदा का रूह है या चाहे हमारी इंसानी रूह है, वो कहां पर है? हमारे अंदर है.
The Holy Spirit, the Holy Trinity, knows Himself internally by the Holy Spirit.
तो बात असली इसको हम बाखरू के वसीला से ही समझ सकते हैं.
We know ourselves internally by our own human spirits.
हम अपने आप को अपनी रूह के जरिए से समझ सकते हैं.
And through the spirits, parties know themselves significantly.
तो इस तरह से हर कोई जो अपनी रूह के जरिए जानता है कि वो कैसा है.
Through the divine spirit, God knows himself exhaustively.
और लेकिन खुदा के रूह के जरिए हम खुदा के बारे में बहुत ज्यादा बातें जो है वो जानते हैं.
Through our human spirits, we know ourselves partially.
लेकिन अपनी रूह के जरिए हम अपने बारे में जुज़वी तौर पर जानते हैं.
Besides the names of the three persons of the Trinity,
तस्लीस पाक तस्लीस के नामों के अलावा,
the works of the Trinity,
पाक तस्लीस के काम,
involve God making Himself known to His people.
और उसके जरिए से भी खुदा अपने आप को हम पर जो है वो जाहिर करता है और हम उसे जानते हैं.
God the Father, like earthly fathers, instructs us.
जिस तरह हमारा जमीनी बाप हमें सिखाता है, हमारी तरबियत करता है, उस तरह आसमानी बाप भी हमारी तरबियत करता है.
John 6 verse 45.
John 6 verse 45. नबियों के सहीफों में ये लिखा है कि वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे, जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है.
The Son makes God known through his incarnation.
तो यीशु मसीह जो है अपने तजस्सुम के जरिए से खुदा को हम पर जाहिर करता है.
John 1 verse 14.
यूहन्ना 1:14. और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल.
John 15 verse 15.
अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी.
God reveals his secrets to his friends in Jesus.
यानी जो बातें रास्त भी थी वो भी खुदा ने अपने लोगों पर जाहिर कर दी हैं, अपने दोस्तों पर.
Just as you say personal things only to your friends.
यानी ये शख्सी बातें हैं जो हम अपने दोस्तों से करते हैं, उसी तरह.
The Holy Spirit makes God known to us by illumination.
जो खुदा का रूह है वो तनवीर, इलाही तनवीर के जरिए, यानी वो बातें हमारे दिल में डाल देता है जिसके जरिए हम खुदा को जानते हैं.
Ephesians 1 verses 17 and 18.
के हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशवा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसके मिराज की और उसकी मिराज के जलाल की दौलत मुकदसों में कैसी कुछ है.
We've looked at God's names and God's works.
और अभी हमने खुदा के कामों और उसकी जो उसके नाम है उनसे अभी हमने उन पे बातचीत की.
Now we think about God's salvation of us.
और अभी हम खुदा हमें किस तरह से निजात देता है उस पर गौर करेंगे.
Salvation itself is knowing God.
निजात बुनियादी तौर पर खुदा को जानना ही है.
God shares his life with us in Jesus Christ.
खुदा हमसे क्या करता है, जिंदगी हमें बांटता है यीशु मसीह के जरिए से.
This life comes to us in regeneration or being born again.
और ये खुदा की जो इलाही जिंदगी है, यानी खुदा की तरफ से मिलने वाली जिंदगी हमें नई पैदाइश यानी नए सिरे से पैदा होने के जरिए से मिलती है.
Jesus said,
यीशु मसीह ने फरमाया,
This is eternal life.
हमेशा की जिंदगी है.
That they may know thee through Jesus Christ whom thou hast sent.
तुझ खुदा वाहद को यीशु मसीह के वसीले से जाने.
That's John 17 verse 3.
ये यूहन्ना 17:3 में लिखा है.
Salvation is God speaking graciously to me in the Bible.
और निजात क्या है, खुदा मोहब्बत भरे अंदाज से फजल के जरिए से हमसे कलाम करता है.
Here we come to the effectual call of the gospel.
और यही खुदा के कलाम का मुअस्सर बुलावा है.
Where God speaks to us through the word,
कि वो हमसे अपने कलाम के जरिए से बात करता है,
especially as preached,
जब उसकी बनादी की जाती है,
powerfully and internally,
और ये बड़े जोरदार तरीके से होता है, खुदा का जोरदार काम है अपने रूह के जरिए से कि वो कलाम जो है हमारी जिंदगी में असर करता है.
My sheep hear my voice.
मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती हैं.
Jesus said in John 10 verse 17. In salvation, God brings us into His family.
और निजात में खुदा हमें क्या करता है, अपने खानदान का हिस्सा बनाता है.
That's called adoption.
इसे कहा जाता है लेपालक बनाना, यानी हम खुदा के खानदान का हिस्सा नहीं, लेकिन वो हमें उसका हिस्सा बना लेता है.
The believer confesses, God is my Father for Jesus' sake.
तो जो ईमानदार है वो ये इकरार करते हैं कि खुदा जो है वो यीशु मसीह के जरिए हमारा बाप है.
This is how the Lord's Prayer opens.
और इसी तरह से हम दुआ रबानी में पढ़ते हैं.
Our Father, which art in heaven.
हमारे बाप तू जो आसमान पर है.
The spirit within us makes us cry out, Abba, Father.
और हमें पता ही है हमारा बाप करके हमारे अंदर जो खुदा ने हमें रूह बख्शा है वो खुदा को अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारता है.
That's Romans 8 and Galatians 4.
और ये रोमियो 8 और गलतियों 4 में बयान किया गया है.
God has forgiven me all my sins and I know it.
खुदा ने मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए हैं और मैं इस बात से वाकिफ हूं.
This is the great biblical and reformation truth of justification.
और ये बाइबल मुकद्दस का और जो तहरीके इस्लाह है कलीसिया थी उसका ये बुनियादी जो है मज़मून है कि हमें खुदा ने किस तरह हमारे गुनाहों को माफ करके रास्तबाज़ ठहराया है.
God the judge makes a declaration in my consciousness through faith.
और खुदा ईमान के जरिए से हमारे दिलों में ये गवाही देता है कि हम माफ कर दिए गए हैं.
That Jesus died for my sins.
यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मुआ.
So my sins are forgiven.
इसलिए मेरे गुनाह माफ हुए.
And Jesus obtained righteousness for me.
और यीशु मसीह ने मेरे लिए रास्तबाजी हासिल की.
So that I receive the righteousness of God by faith in Him.
ताकि मैं ईमान के जरिए से उस रास्तबाजी को हासिल करूं.
Justification means.
तस्दीक से मुराद.
I know God as my pardoner.
के खुदा मेरा शरीककार हो यानी शरीक हो मेरे साथ.
My justifier.
और मेरा रास्तबाज़ ठहराने वाला हो.
And my vindicator.
और मुझे जो है वो इल्जाम से बरी करने वाला हो.
Our salvation is this, that we are united to Jesus Christ.
हमारी निजात इसमें है कि हम यीशु मसीह के साथ मुत्तहिद हों.
I am in him by the Holy Spirit.
और मैं पाक रूह के वसीला से उसमें हूँ.
He is in me by the Holy Spirit.
और वो मुझ में हो अपने पाक रूह के वसीला से.
I'm explaining that salvation itself is knowing God.
तो मैं ये बयान कर रहा हूँ कि निजात बुनियादी तौर पर खुदा को जानना है.
Let's go further.
इससे आगे बढ़ते हैं.
As a saved sinner,
एक निजात याफ्ता मसीही के तौर पर,
I am in the covenant of grace.
इसलिए मैं फजल खुदा के साथ फजल के अहद में हूँ.
This bond of friendship between God and me through Jesus.
और ये जो दोस्ती है, ये ताल्लुक है, ये किसके जरिए से खुदा और मेरे दरमियान खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से.
This is the covenant formula.
और ये अहद का जो कुलिया है.
God is my God and I am his child.
कि खुदा मेरा खुदा है और मैं उसका फर्जंद हूं.
In the new covenant,
इस नए अहद में,
God says, all shall know me.
खुदा फरमाता है कि वो सब मुझे जानेंगे, मुझसे वाकिफ होंगे.
From the least to the greatest.
छोटे से लेकर बड़े सब.
All believers have been recreated in the image of God.
तमाम जो ईमानदार हैं वो मसीह यीशु में नए शबी पर बनाए गए हैं.
There are three parts in the image of God.
इसके तीन हिस्से हैं मसीह की शबी, खुदा की शबी के ताल्लुक से.
According to Ephesians 4 verse 24.
इफिसियों 4 बाब के से.
And Colossians 3 verse 10.
और कुलसियों 3 के मुताबिक.
Knowledge, righteousness and holiness.
Knowledge, ilm.
Righteousness.
रास्तबाजी.
And holiness.
और पाकीज़गी.
And the knowledge in the image of God is the knowledge of God.
और जब हम कहते हैं कि हमें मसीह की शबी है, तो इसका मतलब ये है कि हमें खुदा का इल्म है.
Not physics or how to milk a goat.
और ना ही ये कोई फिजिक्स है.
The believer, every believer is in office.
तो इसलिए जो हर जो ईमानदार है वो इस बात से वाकिफ है.
We share the threefold office of Christ by the Holy Spirit.
और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के पास तीन ओहदे हैं, बादशाह, काहिन और.
To be a Christian is to be anointed by Christ's Holy Ghost.
और रुकस के वसीला से हमें क्या दिया गया है, हमें मसा किया गया है.
As a prophet, priest and king.
नबी, काहिन और बादशाह के तौर पर.
A prophet.
नबी.
First receives and knows the word of God from the Bible.
वो खुदा के कलाम से खुदा के कलाम को हासिल करता है.
And so number two,
दूसरी बात,
communicates it to others.
और वो खुदा के कलाम में से जो बातें सुनता है, सीखता है, वो दूसरों को भी बताता है.
So God is knowable and we know him by grace.
इसलिए ये हम कहेंगे कि खुदा को जाना जा सकता है क्योंकि हम फिर उसे दूसरों तक भी बता सकते हैं.
First John 2 verses 20 through 21.
First John.
Yeah, 1 John 2, 20 through 21.
और तुमको तो उस कुदूस की तरफ से मसा किया गया है और तुम सब कुछ जानते हो. मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच्चाई को नहीं जानता, बल्कि इसलिए कि तुम उसे जानते हो और इसलिए कि कोई झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है.
We are in the covenant, in the image of God, in office and in the church.
तो इसका मतलब यह है कि हम खुदा के साथ अहद में हैं और हमें खुदा ने ओहदे अता किए हैं और हम खुदा के कलीसिया का हिस्सा हैं।
The church is called the city of God and God's temple in the Bible.
और कलीसिया को नए अहदनामे में खुदा का शहर और खुदा की हैकल कहा गया है।
God is known in her palaces for a refuge.
और खुदा जो है अपने महलों में है और हमारा हमारी पनाहगाह है।
Psalm 48 verse 3.
Zabur of Psalm 48
verse 3. Yeah.
तीसरी आयत.
Again, we have thought of thy loving kindness, O God, in the midst of thy temple.
और इसी तरह से ये आयत बयान कर रहे हैं कि किस तरह हम उसकी हजूरी में उसके महलों में रहते हैं।
We believers have thought of God and his loving kindness in his temple or church.
भलाई और रहमत खुदा की भलाई और रहमत जो है उसके साथ रहती है। ज़बूर 23 का आखिरी हवाला।
To move further.
जिससे आगे बढ़कर।
God's revelation to us and salvation of us is received by faith alone.
और खुदा का ये जो खास मुकाशवा है और ये जो निजात है ये सिर्फ और सिर्फ ईमान के जरिए से हमें मिलती है।
The Reformation definition of faith is found in Heidelberg Catechism question and answer 21.
तो हमारे पास जो हाइडलबर्ग कैटेकिज्म है ये उसके जवाब नंबर 21 में भी मिलता है।
21.
हकीकी ईमान क्या है? हकीकी ईमान से मुराद सिर्फ उन सच्चाइयों का इल्म नहीं जो खुदा ने अपने कलाम में जाहिर की है याकूब 1:6 बल्कि उस दिली एतमाद के साथ भी है रोमियो 4:18 और 5:1 जो रुलकुद्स खुशखबरी के वसीले से मुझमें पैदा करता है और ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि मेरे लिए भी गुनाहों की माफ़ी अब्दी रास्तबाजी और निजात खुदा की तरफ से मुफ्त दी गई हैं महज यीशु मसीह के काम के सबब से।
Faith is a certain knowledge of God.
ईमान जो है वो यकीनी इल्म है खुदा के बारे में।
And everything taught in scripture.
और हर चीज है वो बाइबल मुकद्दस में बयान की गई है।
You should be more certain of what's taught in the Bible than your own name.
तो इसलिए आपको इस बात के बारे में यकीनी होना चाहिए कि जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो सब जो है वो बिल्कुल ठीक है।
Faith is an assured confidence of these things.
तो ईमान जो है वो उन तमाम चीजों का दिली एतमाद है।
I am certain that these things are true.
और मैं मेरा ये ईमान है कि ये सब चीजें जो मैंने सुनी है ठीक
है। And this God and salvation are mine.
और ये जो खुदा की निजात है ये मेरी है।
Because faith includes assurance that scripture applies to me.
क्योंकि ईमान जो है ये इस बात की जमानत देता है कि जो कुछ बाइबल को उसमें लिखा गया है वो उसका इतलाक मुझ पर होता है।
Let us read 1 John 5 verses 19 and 20.
1 John
5 19 and 20.
Okay.
The last two verses of 1 John.
Yeah, yeah, yeah. हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जे में पड़ी हुई है और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हैं। हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है।
True Christians know these things personally and inwardly.
जो हकीकी मसीह हैं वो इन बातों को सही तौर पर और दिली तौर पर यानी हकीकी तौर पर जानते हैं।
So what is the key question for the Christian?
तो इसलिए मसीहों के लिए सवाल क्या है?
It's not really is God knowable?
कि क्या खुदा को जाना जा सकता है?
That's a more philosophical question.
ये एक फलसफियाना सवाल है।
And this has already been sorted out for us by God's grace in Jesus Christ.
क्योंकि इसका जवाब खुदावंद यीशु मसीह के जरिए खुदा की तरफ से हमें मिल चुका है।
The real question is this.
असल सवाल ये है।
How do I grow in the knowledge of God in Jesus Christ?
तो असल सवाल जो हमारे लिए है आज वो ये है क्या किस तरह हम खुदावंद यीशु मसीह के जरिए खुदा के इल्म में तरक्की करते हैं?
I already know him by his rich grace.
मैं पहले से ही खुदा के फजल से जो बड़ा फजल है उसके जरिए से खुदा को जानता हूं।
And I need to increase in this saving knowledge.
और मुझे इस निजात बख्श इल्म को और ज्यादा क्या करना है? बढ़ाना है।
The way of growth involves God's word.
और इसमें क्या शामिल है? खुदा का कलाम।
Read the word, think about the word, meditate upon the word.
तो इसलिए जरूरी है कि खुदा के कलाम का मुतालिया करे, उस पर गौर करे और उसको और ज्यादा सीखने की कोशिश करे।
The word is especially powerful as preached.
और कलाम जो है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है।
The word is symbolized and sealed in the two Christian sacraments.
और इसका इजहार जो है ये वो हमें दो सैक्रामेंटों में मिलता है।
Through them God assures us and gives us visible signs and seals.
और ये वो मोहरे हैं या ऐसे जाहिर निशान हैं जिनके जरिए से हम जानते हैं.
The way of growth is that of spiritual exercises according to the word.
यानी ऐसी हम मशकें करें, यानी पहली बात सैक्रामेंटों में शामिल होकर और फिर ऐसे काम करें जो खुदा के कलाम में बयान किए गए हैं.
Worship and thanksgiving and prayer.
दुआ शुक्रगुजारी के जरिए से, इबादत के जरिए से.
Because in these things we meet God.
क्योंकि इन सब चीजों के जरिए हम किससे मिलते हैं? खुदा से.
We draw near to God.
हम खुदा के नजदीक जाते हैं.
Do you doubt the existence of your wife or husband whom you meet and talk with?
क्या आप खुदा, आप अपनी बीवी और शोहर से ऐसे मिलते हैं?
No more should you doubt the God to whom you pray and whom you worship.
तो क्या आपको खुदा से मिलना नहीं चाहिए?
Moses prayed this.
मूसा ने ये दुआ की.
I beseech thee, O God, show me thy glory.
के मुझे अपना, मैं तुझसे ये दरख्वास्त करता हूं कि मुझे अपना चेहरा दिखा.
That's a good prayer for this conference.
के मुझ पर अपने आप को क्या कर जाहिर कर, यानी उसका सवाल ये था.
The apostle Paul prayed this in Philippians 3.
और पौलुस जो है वो ये दुआ करता है फिलिपियों के खत में.
Oh that I may know Christ and the power of his resurrection.
कि मैं मसीह को जान सकूं और उसकी जी उठने की कुदरत को.
Besides the word and spiritual exercises,
और इन रूहानी मशकों के जरिए,
God uses difficult circumstances in our lives.
और इनके अलावा खुदा ऐसे हमें मुश्किल हालात के जरिए से भी सिखाता है अपने आप के बारे में.
The difficult circumstances drive us to the word and the spiritual exercises.
और जो बुरे हालात होते हैं, मुश्किल हालात होते हैं, ये हमें और ज्यादा खुदा के करीब लाते हैं, या हमें खुदा के बारे में सीखने का मौका फराहम करते हैं.
Especially when we grow lazy and slack spiritually.
और खासतौर पर जब हम रूहानी तौर पर कमजोर हों या सुस्त हों.
God sends trials.
और खुदा जो है वो आजमाइशों के जरिए से हमें सिखाता है.
And chastisement.
और फिर हमें सिखाता है कि हम किस तरह पशिमान उन पर होते हैं.
And sufferings.
और फिर हमारी तकलीफ के जरिए से.
You know something of trials and chastisement and sufferings.
और आप सब जो है वो तकलीफ के बारे में, मसाइब के बारे में, दुखों के बारे में जानते हैं.
And whom God loves, he chastens.
और जिनको आपको पता है, जिसको बाप मोहब्बत करता है उसे कोड़े भी लगाता है.
He sends fiery trials to consume the dross that we come forth as gold.
और वो हमें ऐसे क्या करता है, जिस तरह सोने को उताया जाता है वैसे ही हमें भी. हाँ बिल्कुल ठीक.
The knowledge of God is always vital.
खुदा का कलाम जो है ये हमेशा जिंदा रहता है, यानी ये मुतहर्रिक है.
But there are times when that truth is especially vital.
और खास तौर पर जिन दिनों में ये हमारे लिए बहुत ज्यादा कह लें कि हमें मुतहर्रिक करते हैं.
Earlier Psalm 46 was sung.
ज़बूर 46.
Psalm 46 speaks of terrible troubles.
तो जब हम ज़बूर 46 गाते हैं तो उसमें काफी सारी मुश्किलात का जिक्र है.
Wars.
जंगों का जिक्र है.
Attacks on the church.
और कलीसिया पर हमले का जिक्र है.
Persecution.
इज़हार सानी का जिक्र है.
Probably fiercer afflictions than you or I have ever experienced, especially me.
और ऐसी बातों का जिक्र है जिनका हमने कभी सामना ही नहीं किया.
And what does Psalm 46 tell us to do in such dire straits?
और इस सारी बुरी हालत में ज़बूर 46 हमें क्या सिखाता है?
Be still and know that I am God.
खामोश हो जाओ और जानो कि मैं खुदा हूँ.
We need more stillness and knowledge of God in our afflictions.
तो इसलिए हमें अपनी मुसीबतों में ये जानना है कि खुदा हमारे साथ है.
Another time when we especially are aware of the need to know God,
जब हमें खुदा को जानने की जरूरत है,
is when our own death grows near.
जब हम करीबुल मर्ग होते हैं.
Or we think that we may die.
कि हम मर जाएंगे.
The apostle Paul is our example here.
पौलुस की यहाँ पर मिसाल जो है वो पेश करेंगे.
I know whom I believed.
मैं जानता हूं कि मैं किस पर ईमान रखता हूं.
And I am persuaded that he is able.
और मैं जानता हूं कि वो इस काबिल है.
To keep that which I have committed unto him.
कि जो कुछ मैंने किया है.
Against that day.
उस दिन के खिलाफ.
2 Timothy 1 verse 12. He's about to be executed for the name of Jesus.
वो जानता है कि मसीह के नाम की खातिर जो है वो दुख पहुंचाया गया.
He's thinking of his impending death.
वो जानता है कि वो करीब मर्ग है.
And he says, I know whom I've believed.
वो लेकिन वो कहता है कि मैं उसे जानता हूं जिस पर मैं ईमान रखता हूं.
So he died in the peace of God.
इसलिए वो कह ले कि खुदा के इत्मीनान में उसने जान दी अपनी.
And And after we die, and in the new heavens and the new earth,
और जब हम मर जाएंगे और नया आसमान और नई ज़मीन,
our knowledge of God will vastly increase.
और हमारा इल्म जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा खुदा के मुताबिक.
Now we see through a mirror dimly.
अभी जो है हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है.
But then, face to face.
लेकिन हम उस वक्त रूबरू देखेंगे.
Now I know in part.
अभी मैं जुज़वी तौर पर देखता हूँ.
But then I shall know even as I am known.
और मैं ये पलूस का वो हवाला कर दूँगा, मैं उस तरह जिस तरह से मैं जाना गया हूँ, मैं उस तरह जानूंगा.
Amen and hallelujah.
Amen और hallelujah. Amen.